आमोस अध्याय आठ। आमोस अध्याय आठ में पद एक। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूं दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। वो एक और दर्शन देखता है। गर्मियों के फल आड़ू, खुबानी, प्लम, मधुरस और चेरी आदि। आमोस अध्याय आठ पद दो और तीन। और उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इसराइल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएगी। जो विनाश आने वाला था, मंदिर में खुशी के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। मृतक पशुओं के समान मुर्दे सब जगह खामोशी से दफनाए जाएंगे। आमोस अध्याय आठ पद चार। ये सुनो, तुम जो दरिद्रों को निकालना। यहां परमेश्वर फिर दोष लगाता है। जब वो अमीर लोगों के द्वारा गरीबों के दमन की बात कहता है, तुम जो दरिद्रों को निगल जाते हैं। आमोस अध्याय आठ पद चार में आगे लिखा है, और देश के नम्र लोगों को नाश करना चाहते हो। वे गरीबों की लाचारी का फायदा उठाते थे। आमोस अध्याय आठ पद पांच। जो कहते हो, क्या चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खते खोलकर। नया चांद सबत का दिन था, उस दिन काम करने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए वे नए चांद से नफरत करते थे। वे लोग नए चांद को देखना पसंद नहीं करते थे। ये कब बीतेगा, मैं बेचना चाहता हूं, आज दुकान बंद करनी पड़ी, मैं दुकान बंद नहीं करना चाहता, मुनाफा कमाना चाहता हूं। वे लोग सबत के दिनों से नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें सबत के दिन में दुकानें बंद रखनी पड़ती थी। दूसरे शब्दों में वे लालची हो गए थे। सबत के दिन दुकान बंद रखनी होती थी, इसलिए वे अप्रसन्न रहते थे। लोग इतने लालची हो सकते हैं कि सप्ताह में सातों दिन दुकान खोलना चाहते हैं। इसके कारण परमेश्वर दंड लाया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। नया चांद कब बीतेगा कि हम बेच सके, और विश्राम दिन कब बीतेगा कि अन्न के खते खोलें। आमोस अध्याय आठ पद पांच में आगे लिखा है, एपा को छोटा। एपा एक नापने की टोकरी होती थी। वे उस टोकरी को छोटा बनवाते थे, परंतु कीमत पूरी वसूलते थे। सत्य तो ये है कि खरीदार को समान नाप में पूरा नहीं मिलता था। आमोस अध्याय आठ पद पांच के अंत में लिखा है, और शकेल को भारी कर दे और छल से दंडी मारे। वे लोग दो तरह के बाट रखते थे, एक से वे खरीदते थे और दूसरे से बेचते थे। बाट के माप दंड का कोई मानक नहीं था। सब चीजें अव्यवस्थित हो गई थी, क्योंकि वे लोगों का फायदा उठाते थे, धोखा देते थे। वे भारी बाटों को अन्न खरीदने के लिए और अन्न बेचने के लिए हल्के बाटों का प्रयोग करते थे। झूठे बाट, नीति वचन कहता है, परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। आमोस अध्याय आठ पद छः। कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। कहने का अर्थ यह है कि वे सच में जनसाधारण का शोषण कर रहे थे, उनसे अनुचित लाभ उठाते थे, अन्न के बदले लोगों को स्वयं को बेचने के लिए बाध्य करते थे। ऐसी सब बातें परमेश्वर के सम्मुख घृणित है, जहां जरूरतमंदों और गरीबों का फायदा उठाया जाए वहां परमेश्वर वास नहीं करता। आमोस अध्याय 8 पद 7 से लेकर 10 तक। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपना शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी ना भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? ये देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुंडवाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। जब परमेश्वर ये भविष्यवाणी करता है कि दोपहर में सूर्य अस्त और दिन दोपहरी अंधियारा होगा, कुछ लोग कहते हैं ये बोलने का तरीका है। ये जैसे शत्रु से बर्बाद और निराश होने के बाद हम कहते हैं, ओ कल मेरा सूरज डूब गया। आप अपने ऊपर आए दुख और अंधेरे के कारण ऐसे कहते हैं। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि आमोस ग्रहणों को पहले से बता रहा था, जो इसराइल में अगले 20 वर्षों में लगने वाले थे। बिशप अशर 3 ग्रहणों के बारे में बताते हैं जो आने वाले वर्षों में घटित हुए। इनमें से हरेक ग्रहण पर्वों के दिन हुआ था। पहला पेंतिकॉस्ट के पर्व पर, दूसरा तुरियों के पर्व पर और फिर पेंतिकॉस्ट के पर्व पर। इस तरह सूर्य दोपहर में अस्त हो गया और पृथ्वी दिन में अंधियारा हो गई और उनके पर्व दुख में बदल गए। सन 763 में सूर्य ग्रहण हुआ, जो इस भविष्यवाणी के करीब 24 वर्ष बाद हुआ था। अफ्रीका में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, समरिया में नहीं हुआ होगा। हम एक दिन के बारे में पढ़ते हैं जो पर्व का दिन था, फसा का पर्व, और दोपहर में अंधेरा हो गया था। ये ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि फसा के पर्व पूरे चांद के दिन होता है और पूरे चांद के दिन ग्रहण नहीं होता। इसी दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। आपको याद होगा, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। ये अंधकार की भविष्यवाणी मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की होगी। सूर्य खुले दिन के दोपहर में अस्त हो जाएगा और पर्व को दुख में बदल देगा, गीत को विलाप में, और मैं सबकी कटी में टाट बंधवाऊंगा। मरे हुओं के दुख में तुम गंजे हो जाओगे। सर मुंडवाना मृतकों के लिए विलाप का चिन्ह है। आमोस अध्याय 8 पद 11। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। मैं विश्वास करता हूं हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां परमेश्वर के वचन का अकाल है, विरोध है। दुनिया में और किसी भी समय से ज्यादा इस युग में बाइबल छपती है। ज्यादा भाषाओं में अनुवाद होते हैं। परमेश्वर के वचन का आकाल, ये वे लोग हैं जो वचन सुनना नहीं चाहेंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अब नहीं बोलता या कि परमेश्वर का वचन नहीं है, इसका अर्थ है कि लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने बार बार कहा था, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। जब वो 7 कलीसियाओं को संबोधित करता है, तब वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हर कलीसिया को अपना संदेश देने के बाद कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। जिसके पास सुनने के लिए कान नहीं है, वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं बोलता, पर मनुष्य परमेश्वर का वचन सुन नहीं पाता है, उनके सुनने के कान नहीं है। यशाया 59:1-2, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। समस्या परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, पर हम सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुनता, हमारे जीवन व्यवहार ने उसको उत्तर देने में परस्पर विरोधी बना दिया। क्योंकि वे परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, इसलिए परमेश्वर के वचन का अभाव हो गया। ध्यान दे कि परिणाम क्या हुआ है। आमोस 8:12, और लोग यहोवा के वचन के खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। आज संसार की बेचैनी देखें, लोग पूरे संसार में समुद्र से समुद्र तक शांति पाने के लिए भटक रहे हैं। यदि आप परमेश्वर का वचन ना सुने, यदि आपका मन परमेश्वर के वचन से संतुष्ट नहीं होता, तो आप अंधेरे में इधर उधर खोजने की कोशिश में ही रहेंगे कि जीवन के खाली स्थान को भर सके। ये बेचैनी परमेश्वर की आवाज को ना सुनने के कारण, वचन को हृदय में ग्रहण ना करने के कारण होती है। आमोस 8:13, उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। वो ये नहीं कहता कि बूढ़े और कमजोर मूर्छित हो गए, लेकिन वो कहता है कि युवक और युवतियां जो बलवान हैं प्यासे होंगे और प्यास के मारे मूर्छित होंगे, क्योंकि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें बचाए या सहायता करे। जवान जो अपनी जवानी में हैं, परमेश्वर के वचन से बाहर ना रहें तो अच्छा है। हमें परमेश्वर का वचन सुनना और उस पर ध्यान देना चाहिए। आमोस 8:14, जो लोग समरिया के पापमूल देवता की शपथ खाते हैं, जो कहते हैं कि दान की देवता के जीवन की शपथ। दान इसराइल के राज्य में उत्तरी भाग का धार्मिक केंद्र था। यहीं पर यरोबाम ने वेदी बनाई और बछड़ा रखकर कहा, ये देवता है जो तुम्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ा लाया था, इसी देवता की तुम आराधना करो। और समरिया के लोग दान देवता के सम्मुख शपथ खाते थे, तू ही देवता है दान। आमोस 8:14 में आगे लिखा है, और बर्शेबा के पंत की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे।